والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ایک شخص نے شیطان کو دیکھا کہ وہ انگلی اٹھائے ہوئے جا رہا ہے. اس نے شیطان سے پوچھا کہ یہ تم انگلی اٹھائے کیوں جا رہے ہو؟ شیطان کہنے لگا میں اپنی انگلی سے بڑے بڑے کام نکال لیتا ہوں. لوگ جو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں، وہ اسی انگلی کا کھیل ہوتا ہے. اس شخص نے حیرت سے کہا وہ کیسے؟ شیطان نے کہا یہ سامنے جو شہر ہے اسے ابھی میری انگلی تھوڑی دیر میں تباہ کر دے گی، تباہ ہو برباد کر دے گی، اور لوگ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے. شیطان اس شخص کے ساتھ شہر میں داخل ہوا اور ایک بازار میں حلوائی، یعنی وہ جو مٹھائیاں وغیرہ بیچتے ہیں، وہ چینی گھول کر اس کا شیرہ بنانے کے لیے ایک بڑے برتن میں پانی گرم کر رہا تھا. شیطان نے شیرے میں انگلی ڈال کر تھوڑا سا شیرہ نکالا اور اسے دیوار پر لگاتے ہوئے کہا کہ اب دیکھنا یہ شہر کیسے تباہ ہوتا ہے. چنانچہ دیوار پر لگے ہوئے شیرے پر مکھیاں آ کر بیٹھنے لگیں. مکھیوں کا ہجوم دیکھ کر ایک چھپکلی ان پر جھپٹنے کے لیے دیوار پر چڑھی. حلوائی کی بلی تھی، اس بلی نے جب چھپکلی کو دیکھا تو وہ بھی جھپٹنے کے لیے تیار ہو گئی. وہاں اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دو بادشاہ کے سپاہی ہیں، وہ وہاں سے گزر رہے ہیں. ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا. جب کتے نے بلی کو دیکھا تو ایک دم جھپٹا حملہ کیا. بلی نے کتے سے بچنے کے لیے چھلانگ لگائی اور وہ سیدھی شیرے میں گری، اور پانی وہ تو شیرہ تو گرم تھا، بلی مر گئی. جب حلوائی نے دیکھا کہ میری بلی مر گئی ہے، اس نے بادشاہ کے سپاہیوں کے کتے کو مار دیا. اب جب سپاہیوں کو پتا چلا کہ ہمارا کتا مار دیا، انہوں نے حلوائی کو مار دیا. جب حلوائی کے رشتے دار آئے، ان کو پتا چلا، علاقے والے، محلے والے سارے، انہوں نے سپاہیوں کو مار دیا. اب سپاہی کی جب باقی سب کو پتا چلا، انہوں نے آ کر شہر کی اینٹ سینٹ بجا دی اور تہس نہس کر کے رکھ دیا. یہ حکایت شیطان کی حکایات میں لکھی گئی ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین، اس لرزہ خیز حکایت سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے درمیان فتنہ فساد برپا کروانا، ان میں نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرنا اور ان میں آپس میں لڑوانا، یہ شیطان کا پسندیدہ کام ہے. اور یہ مردود کسی طرح جھگڑے کا ماحول پیدا کر کے خود پیچھے ہٹ کر تماشائی بن جاتا ہے. پھر لڑائی جھگڑے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کل تک جو ایک دوسرے پر جان نشاور کرتے تھے اور دعوے کرتے تھے کہ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، جو عزتوں کے محافظ تھے، جو ایک دوسرے کی دوستی کی ان کی مثالیں دی جاتی تھیں، جنہیں ایک دوسرے کے خلاف کوئی لفظ سننا گوارا تک نہ تھا، جو ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار تھے، جو ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت کی ترغیبیں دلایا کرتے تھے، لڑائی جھگڑے جیسے منوس شیطانی کام کی نحوست کے سبب ان کے درمیان نفرتوں کی ایسی مضبوط دیواریں قائم ہو جاتی ہیں कि फिर वो एक दूसरे को देखना तक गवारा नहीं करते। यूं समझिए कि जिस तरह आग घरों को, फैक्ट्रियों को, कंपनियों को, गोदामों को, जंगलात को, गांव देहात और मुख्तलिफ चीजों को घंटों बल्कि मिनटों में जलाकर तबाह बर्बाद कर देती है, इसी तरह हंसते बसते मुल्कों, शहरों, नस्लों, कौमों, घरों, खानदानों और इदारों और तंजीमों का अमन तहस नहस करने और दिलों में नफरतों का बीज बोने में अक्सर लड़ाई झगड़ों की तबाह कारियां ही कारफरमा होती हैं। शैतान के इस खतरनाक वार से रब्बे करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें आगाह किया है और अल्लाह तबारक व तआला पारा 15 सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 53 में इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक शैतान उनके आपस में फसाद डालता है, बेशक शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। अब देखिए बिल्कुल वाजे तौर पर अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, बेशक शैतान इनके आपस में फसाद डालता है। इसी तरह सूरह माईदा की आयत नंबर 91 में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंजुल ईमान, शैतान यही चाहता है कि तुम में बैर और दुश्मनी डलवा दे। अब इन आयात के मुताबिक अगर हम अपने मुआशरे पर निगाह दौड़ाएं तो हमारा जमीर इस बात की गवाही देगा कि आज हमारा मुआशरा जो तबाही का शिकार है, जो लड़ाई झगड़े का है, उसमें शैतान की हद तक कामयाब है। आज कहीं जात पात पर झगड़ा है तो कहीं लिसानी तासुबात नजर आते हैं, कहीं कोई इदारे वाले दूसरे इदारे से लड़ रहे हैं तो कहीं गालम गलोच का सिलसिला है, कभी तलबा और असातिज़ा की लड़ाई हो रही है तो कहीं मियां बीवी का झगड़ा जोर पकड़ रहा है, कहीं सास बहू में तलख कलामी है तो कहीं दुकानदार और ग्राहक आपस में लड़ रहे हैं, कहीं बिजनेस पार्टनर आपस में दस्तों गरीबान है तो कहीं मालक मकान और किराएदार का झगड़ा चल रहा है, इसी तरह कंडक्टर और ड्राइवर ये सवारियां ये भी लड़ पड़ते हैं, और कहीं ठेले वाले आपस में लड़ रहे हैं, कहीं डॉक्टर और मरीज आपस में मुतमईन नजर नहीं आ रहे, कहीं ठेकेदार और मुलाजमीन आपस में गुत्थो गुप्था है तो कहीं पड़ोसी एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, कहीं रिश्तेदारों में खाना जंगी ने माहौल गर्म कर रखा है तो कहीं इमाम और मुक्तदियों में यानी नमाजियों में फासले बढ़ रहे हैं, और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों कहीं बरसों की दोस्ती जो है उसमें अनबन चल रही है और कहीं पूरा घर ये मैदान जंग बना हुआ है। अगर हमने कुरानी अहकामात को नजरअंदाज न किया होता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर हम अमल पैरा होते, बुजुर्गान दीन के बताए हुए तरीके पर हम अमल पैरा होते, इनके अता करदा मदनी फूलों पर अमल करते तो झगड़े की तबाहकारियां समझते, इसके नुकसानात को जानते तो फिर मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों आज उनसे बचते और आज हमारा जो मुआशरा है ये अमन का गहवारा होता। और झगड़े की तबाहकारियों पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने झगड़े की सख्त मुजम्मत बयान की है, ए आशिकान मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए आशिकान रसूल, गौर कीजिए हमारे नबी जिस काम से मना कर रहे हैं आज उसी काम में उलझ रहे हैं, हमारे नबी जिस काम को बुरा कह रहे हैं आज उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लोग उसी काम में जा रहे हैं। जी हाँ, ये देखिए बुखारी शरीफ में हमारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया गया है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक के यहां सबसे ज्यादा नापसंदीदा शख्स वो है जो बहुत ज्यादा झगड़ालू हो। अब हदीस पाक में तो झगड़ालू शख्स को नापसंदीदा कहा गया, अब बंदा जेंटलमैन बन रहा है, बंदा कह रहा है जी मैं बड़ा मोहसज आदमी हूं, मैं तो जनाब अपने हमसाय को छोड़ूंगा नहीं, मैं तो बिजनेस पार्टनर को छोड़ूंगा नहीं, मैं तो रिश्तेदारों को सबक सिखा दूंगा, मैं तो सामने वाले को यूं कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। हमारे नबी क्या फरमा रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये शख्स जो है ये अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक सबसे नापसंदीदा है। कौन? जो झगड़ालू है, बहुत ज्यादा झगड़ा करता है। यहां मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक और फरमान सुनिए, जो शख्स बेजा झगड़ता है वो हमेशा अल्लाह पाक की नाराजी में होता है, यहां तक कि इसे छोड़ दे। हदीस पाक में आता है कि कोई कौम हिदायत पर रहने के बाद गुमराह नहीं हुई मगर झगड़ों के सबब। अब मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आकाश हमारा जहन बने कि लड़ाई करना, झगड़ा करना ये अच्छा काम नहीं है, अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा है, अल्लाह के महबूब के नजदीक नापसंदीदा काम है। आकाश के हम अपना जहन बनाए, हमें झगड़ों से बचना है। लेकिन आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि भाई मैंने ज्यादती नहीं की, मेरा तो हक बनता है, मैं तो हक पर हूं, मैं सही कह रहा हूं, गलती इसकी है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हक पर होने के बावजूद झगड़ा ना करें। सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा ईमान की हकीकत में उस वक्त तक कमाल को नहीं पहुंच सकता जब तक के वो हक पर होने के बावजूद झगड़ा ना छोड़ दे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो फरमाते हक पर होने के बावजूद भी झगड़ा छोड़ दे। हदीस पाक से मालूम हुआ कि झगड़ालू शख्स को अल्लाह पाक नापसंद फरमाता है और झगड़ा करने वाला अल्लाह की नाराजी मोल लेता है। झगड़ा करना गुमराही के गहरे गड़े में धकेल देता है और हक पर होने के बावजूद झगड़ा करने वाला उस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पा सकता जब तक के झगड़ा छोड़ ना दे। लड़ाई झगड़ा करना इस कदर बुरा है, इस कदर बुरा है कि कुरान में इसको बुरा कहा गया, अहदीस मुबारका में इसको बुरा कहा गया, बुजुर्गान दीन ने इसको बुरा कहा। जी हां, हजरत सैयदना इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि झगड़े अगरचे हक बात पर हो, झगड़े अगरचे हक बात पर हो, फिर भी इनकी कसरत नाजायज कामों में मुबतला कर देती है। और झगड़ों की छोटी आफत यह है कि झगड़ालू शख्स नमाज में होता है लेकिन इसका दिल लड़ाई झगड़ों में मशगूल होता है। हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अपने दीन को झगड़ों के लिए निशाना बनाता है वो अक्सर बदलता रहता है। हजरत सैयदना इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, झगड़े का दीन से कुछ ताल्लुक नहीं। आपने यह भी इरशाद फरमाया कि झगड़ा दिलों को सख्त कर देता है और कीना पैदा करता है। लिहाजा मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, झगड़ा ये तबाकुन मरज है और भलाई इसी में है कि लड़ाई झगड़ों के नुकसानात को समझते हुए पहले से इसके बारे में अवेयरनेस मिल गई, हमें पता चल गया कि झगड़ा करना ये नुकसानदेह है, झगड़ा करना अल्लाह को नापसंद है, झगड़ा करना उसके रसूल के नजदीक बुरा है। तो लिहाजा हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ देना यह भी पसंदीदा है। तो लिहाजा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह, जो हक पर होने के बावजूद भी झगड़ा छोड़ दे। बंदा कहता है जी मेरा हक बनता है, मैं तो यूं कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, लेकिन इस्लाम जो है ये मिला रहा है, इस्लाम दूर नहीं कर रहा। इस्लाम मुसलमानों में मोहब्बत चाहता है, इस्लाम मुआशरे में अमन चाहता है, इस्लाम भाई भाई को मिलाता है, इस्लाम बाप बेटे और माँ बेटे के दरमियान मोहब्बतें पैदा करता है। सुभान अल्लाह, देखिए इस्लाम का अंदाज कैसा प्यारा है कि जो कोई अपने माँ बाप को मोहब्बत भरी निगाह से देखे उसे एक मकबूल हज का सवाब मिलता है, रहमत भरी निगाह से देखना है मकबूल हज का सवाब मिलता है। जब दो मुसलमान आपस में मुसाफा करते हैं और दुरूद पाक पढ़ते हैं, इनके हाथ जुदा होने से पहले सुभान अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। और हमारा इस्लाम, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम को आम करो, खाना खिलाओ, जन्नत में सलामती से दाखिल हो जाओगे। हमारा इस्लाम तो चाहता है सलाम करें, एक दूसरे को सलामती की दुआएं दें, हमारा इस्लाम तो चाहता है खाना खिलाएं, किसी को कपड़े पहनाएं, किसी के काम आए, किसी मुसलमान को तकलीफ ना दें, उसे अजियत ना दें। एक शख्स की मगफिरत कर दी गई, कैसे? कि उसने रास्ते में चलते हुए एक दरख्त को हटा दिया था जिससे लोगों को चलने में तकलीफ होती थी। अब बताइए, जरा सी तकलीफ से मुसलमानों को बचाया, उसकी मगफिरत कर दी गई। हदीस पाक में आया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों को नफा दे। लिहाजा आकाश के, आकाश के मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुम उलालिया ने ये दावत इस्लामी का जो गुलशन सजाया, आज दुनिया के चप्पे चप्पे में दावत इस्लामी के मदनी काफले दावत इस्लामी के पैगाम पहुंच रहे हैं। आकाश कि हम भी अपने किरदार को मुजयन करें उन बातों से जिन बातों के बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत फरमाई। आकाश के हम अपने किरदार को मुजयन करें قرآن پاک کی ان آیات کے احکامات سے جن میں ہمیں جھگڑے سے بچنے کا کہا گیا، جن سے ہمیں صلح کرنے کی طرف کہا گیا. اور میرے پیارے اسلامی بھائیو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے جنت کے اندرونی کنارے میں ایک گھر کا ضامن ہوں. سبحان اللہ، حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہ کرے. لہذا اے کاش ہم بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہم صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور جھگڑا چھوڑ دیں. سبحان اللہ، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہیں اگر شوہر کو شکایت ہے بیوی سے، تو کہیں بیوی شوہر سے شکایت ہے. روز روز کی لڑائی کے سبب نہ صرف خود اپنی زندگی تکلیف دہ ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے برے اثرات ان کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں. اور اولاد کے دل میں آج نہ ماں باپ کا دب ہے، اور ماں کا دب ہے نہ باپ کا. اور یہ ایک نااتفاقی کا سبب یہ بھی ہے کہ مرد و عورت ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں کر پاتے، اور چھوٹی چھوٹی غلطی کو اپنی نفسانی ضد بنا لیتے ہیں. اور مرد چاہتا ہے کہ عورت نوکرانی بن کر رہے، اور عورت چاہتی ہے مرد میرا غلام بن کر رہے، میرے اشاروں پر چلے. اور میاں بیوی کے درمیان جب ایسے خیالات پیدا ہو جائیں گے، تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر زندگی کیسے گزر پائے گی. اور میاں بیوی کے لڑائی میں بچوں کا مستقبل بھی داؤ پر لگ جاتا ہے، ان کی ذہنی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے. جی ہاں، ان کی ذہنی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے. اور ایسوں کی نصیحت پھر بچوں پہ اثر نہیں کرتی. اب میاں بیوی لڑ رہے ہیں، ماں باپ لڑ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بچوں کو نصیحت کر کے، بھائی محلے میں لڑنا نہیں کسی جا کر، وہ کیسے ہوگا، بچہ عمل کیسے کرے گا. لہذا والدین کو لڑتا دیکھ کر وہ بھی مار داڑ سیکھ جاتے ہیں. بعض اوقات واسطہ پڑتا ہے کبھی لوگوں سے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپس میں ذرا تلخ آدمی ہے، یہ ذرا سخت ہے، یہ ذرا غصے کا تیز ہے. تو بعض اوقات بات ہوئی ہے وہاں بیٹھے بیٹھے مدنی مشورے میں، بھائی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ بھی آگئے کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر یہ ماحول دیکھا کہ والد صاحب نے کھانا مانگا تو اس کی امی جان نے برتن اٹھا کے مارا جا کھا لو، یا اس کے والدہ نے پیسے مانگے تو ابو نے کوئی چیز اٹھا کے ماری، یہ لو کھاؤ. ہو سکتا ہے گھر میں یہ ماحول ہو، تب اولاد آگے کیسی بنے گی؟ اولاد بھی یہی کرے گی، اور کیا کرے گی. تو جن بچوں کو گھر سے تربیت ملے گی، نرمی کی، محبت کی، شفقت کی، پیار کی، ان کی اولاد بھی ایسے ہی ہوگی، نرم ہوگی، محبت والی ہوگی، بہن بھائیوں سے نباہ کرے گی، ماں باپ کے ساتھ نرمی کرے گی. اور اگر بچے کی طرف دیکھے، بچہ کچھ سیکھ کے آتا نہیں ہے، بچہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ دنیا میں سیکھتا ہے آ کر. تو جب دنیا میں آیا، اگر ماں باپ نرمی کر رہے ہیں، شفقت کر رہے ہیں، ٹالرنس ہے، برداشت ہے اگر ماں باپ کے اندر، تو پھر اولاد کے اندر یہی وصف پیدا ہوگا. اگر ماں باپ، اب بتائیے اگر شوہر جو ہے یہ بیوی کو مارتا ہے، تو اب بتائیے بچہ ماں سے محبت کرتا ہے، ماں اس کو کھانا کھلا رہی ہے، ماں اس کو نہلا رہی ہے، ماں اس کو کپڑے پہنا رہی ہے، ماں اس کی خدمت کر رہی ہے. اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ جو ماں میری خدمت کرتی ہے، یہ آدمی اس کو مار رہا ہے، یہ اسے برا بھلا کہہ رہا ہے، اور میرا باپ ہے. ابھی بچہ کچھ کر نہیں سکتا، کچھ نہیں کرے گا، لیکن جب یہ بچہ گرو کرے گا نا، بڑا ہوگا، پھر جب یہ مضبوط ہوگا، اس کے ذہن میں وہ بات ہے کہ میرے باپ نے میری ماں کو مارا تھا، اب یہ بدلہ لے گا بڑا ہوگا. کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں، بچہ 7 سال تک تمہارا کھلونا ہے، 14 سال کی عمر تک تمہارا خادم ہے، اور 14 سال کے بعد دوست یا دشمن ہے. تو لہذا وہ افراد جو کہتے ہیں جی بس غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ بندہ جو کہتا ہے جی بس غصہ آ جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اس کے نقصانات تو دیکھے آپ نے، اس کے لڑائی جھگڑوں کے نقصانات تو دیکھے. کہ پھر یہ بندہ اگر کہے تو پھر یہ کہے گا یہ دن اپنی ہی دیکھے ہیں، یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. تو لہذا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، اور پھر اپنے چیلو چانٹوں کو بھیجتا ہے. ان چیلو چانٹوں میں ابلیس کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ فتنے باز ہوتا ہے، اور ان میں آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر ایک دوسرا آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی. یہ سن کر اسے ابلیس اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بہت اچھا ہے. حضرت سیدنا اعمش رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، مجھے خیال ہے کہ فرمایا اسے چمٹا لیتا ہے. اب بتائیے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے कि शैतान मियां बीवी में जुदाई डलवाता है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है कि जो मियां बीवी के दरमियान जुदाई डलवाए वो हम में से नहीं। अब सास गौर करें, बहू भी गौर करें कि जो मियां बीवी के दरमियान जुदाई डलवाए, उनकी हमसाइयां गौर करें, उनके रिश्तेदार गौर करें कि इसकी बात बुराई के तौर पे इसको बयान की, इसकी बुराई के तौर पे इसको बयान की। फिर फरमाया जो दो दोस्तों में जुदाई डलवाए वो हम में से नहीं। अब दोस्तों के अंदर जुदाई डलवाना कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाए, इससे टूट जाए, ये मेरे करीब आ जाए, उससे दूर हो जाए, फिर उसकी बुराइयां की जाती है, उसके सामने उसकी बुराइयां की जाती है, उसके सामने उसकी बुराइयां की जाती है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, काश हम घरेलू झगड़ों से बचें, हम लड़ाई झगड़ों से बचें। और मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुम लालिया हमारे अखलाक की तरबियत करते हैं, हमारे किरदार की तरबियत फरमाते हैं, करेक्टर बिल्डिंग फरमाते हैं। और आपने इसके लिए मुतअद्दद बार मदनी मुजाकरों में भी इरशाद फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम जिस मुआशरे में ग्रो कर रहे हैं, बाज लोग ऐसे हैं जो लड़ाई झगड़ों के माहौल में ग्रो कर रहे हैं, उनके मोहल्ले के अंदर, इलाके के अंदर वो लड़ाइयां, झगड़े, मार कुटाई, एक दूसरे कभी जरा सी बात पर लोग ट्रैफिक के सिग्नल पे झगड़े हैं, इधर से रिक्शे वाले के साथ झगड़े हैं, इधर से ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ झगड़े हैं, उधर से घर से निकलते घर वालों से झगड़े हैं, ऑफिस पहुंचे दुकानदारों से झगड़े हैं जाकर। हमें अपने आप को समझाना चाहिए, हमें अपनी जेन बनाना चाहिए। तो इसके लिए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुम लालिया फरमाते हैं कि जब किसी काम को करना हो, जब किसी काम को करना हो तो उसके फायदे पड़े जाते हैं, और किसी को छोड़ना हो तो उसके ना करने के फायदे पड़े जाते हैं। तो आकाश के झगड़े छोड़ देने के फजाइल पर गौर करें, झगड़े से बचने के फायदे पड़े और झगड़ा करने के नुकसानात को पढ़ें। तो नाचाकियों का इलाज, ये मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुम लालिया आपने रिसाला अता फरमाया, काश इसका मुताला करें। नाचाकियों का इलाज, शैतान के बाद हथियार, इनका मुताला करें। और अगर वाकई कोई सास बहू है या मियां बीवी है वो चाहते बचे, तो फिर उसके लिए घर अमन का गहवारा कैसे बने। जी हां, घर अमन का गहवारा कैसे बने, ये बड़ा अहम रिसाला है। ये अमीर अले सुन्नत दामत बरकातहुम लालिया का हमारे पास बड़ी बेहतरीन तहरीर है, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। लिहाजा लड़ाई झगड़ों की नहुसत बाज़ुकात ये होती है कि ये इंसान नेमतों से महरूम हो जाता है। मसलन लड़ाई झगड़े के दौरान किसी का सर फटता है तो किसी की आंख फूट जाती है, किसी का बाजू टूटता है तो किसी को चोट लग जाती है, किसी के मोरों में झटका लग जाता है तो बाज़ुकात किसी का रिश्तेदार, कोई भाई दोस्त जिंदगी से हाथ धो बैठता है, और कभी खुद ही लुकमा अजल का शिकार बनकर मौत के घाट उतर जाता है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों याद रखिए, मदनी चैनल के नाज़रीन याद रखिए, जहां लड़ाई झगड़े के दुनियावी नुकसानात हैं वहीं दीनी तौर पर भी बंदा बहुत ज्यादा महरूमियों का शिकार बनता है। मसलन शब्बे कदर वो अजीम रात है जिसकी अहमियत से बच्चा बच्चा आगाह है। इस रात में कुरान करीम को उतारा गया और ये रात हजार महीनों से बेहतर है। इस रात की फजीलत में कुरान मजीद के 30वें पारे में एक पूरी सूरत मौजूद है, मगर इस बाबरकत रात की तईन भी दो मुसलमानों की लड़ाई के सबब पोशीदा रखा गया। यानी इस रात कौन सी रात है ये, इसके बारे में सुनिए। हजरत सैयदना उबादा बिन सामित रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें शब्बे कदर बताने के लिए तशरीफ लाए कि बताएं कि शब्बे कदर कौन सी रात है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें शब्बे कदर बताने आया था मगर फुला फुला लड़ पड़े, तो शब्बे कदर की ताइन उठा ली गई। मुमकिन है कि यह उठाया जाना तुम्हारे ही लिए बेहतर हो। अब इसे रमजानुल मुबारक की आखिरी नवी, सातवीं और पांचवीं रात में तलाश करो। अब देखिए हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के तहत लिखते हैं कि इन झगड़ा करने वालों का झगड़ा नाहक भी था और एतदाल से ज्यादा भी, जिसका असर यह हुआ, मालूम हुआ कि दुनियावी झगड़े मनहूस हैं, मालूम हुआ कि दुनियावी झगड़े मनहूस हैं और इनका वबाल बहुत ज्यादा है। इस वजह से अल्लाह पाक की आई हुई रहमतें रुक जाती हैं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, गौर कीजिए कि आज घर वाले कहते हैं रिस्क पूरा नहीं होता, आज कहते हैं जी घर हाथ बड़ा तंग है, आज कहते हैं जी बरकत नहीं है, आज जनाब रोजी नहीं मिलती, आज कहते हैं जनाब किराया का घर है अपना घर नहीं हो रहा, आज लोग कहते हैं कि जनाब हम मदीना देखना चाहते हैं वसाइल नहीं आ रहे, आज ये कहते जनाब बेबरकती है पूरी नहीं हो रही। अब हदीस पाक में क्या आता है, ना इत्तिफाकी की सबसे पहली नहुसत यह है कि बरकत उठ जाती है। घर पे तो गौर करें, ना इत्तिफाकियों पे तो गौर करें कि हमारे घर में ना इत्तिफाकी वाले वाकियात कौन कौन से हैं, कितनी ज्यादा ना इत्तिफाकियां, बात बात पे झगड़ा, कभी खाना ना मिलने पे झगड़ा, कभी कपड़ा ना मिलने पे झगड़ा, कभी बच्चों के स्कूलिंग पर झगड़ा, कभी किसी रिश्तेदारों के घर जाने ना जाने पे झगड़ा, अगर घर वाले मेके जाना चाहते हैं तो जाने ना जाने पे झगड़ा, तरह तरह सी बात पर लोग झगड़ा करते हैं। बदकिस्मती के साथ टॉलरेंस बर्दाश्त का मादा आज हमारे मुआशरे रुखसत होता चला जा रहा है, कोई दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आइए दावत इस्लामी के मदनी माहौल को अपनाइए और दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव साइकोलॉजी आप देखेंगे। हमारे एक दोस्त हैं, वो मैंने फैजान मदीना आलमी मदनी मरकज की दावत दी, वो PhD पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर बाहर के मुल्क से करके आए, तो मेरी बात हुई तो वो मैंने फैजान मदीना का दौरा करवाया, सारा दिखाया, वो मुझे कहते जी एक बात नोट करें आप, कहते देखिए या जितने जितने अफराद आपको मिल रहे हैं इनके चेहरे पे इत्मीनान कितना ज्यादा है, ये मुतमिन कितने ज्यादा है, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी। देखिए शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकात मालिया, ये आप नेगेटिव मेंटेलिटी नहीं दे रहे, हमें नेगेटिव नहीं दे रहे, हमें पॉजिटिव साइकोलॉजी के जरिए। देखे नबी, जिस नबी से मोहब्बत करते हैं वो तो ऐसे थे, मदीने शरीफ वाले आप मदीने से मोहब्बत करते हैं वो तो ऐसे थे, वो तो ऐसे थे, हमें ऐसे करना है, हमें यू करना है, हमें यू करना है, पॉजिटिव साइकोलॉजी के जरिए, मुस्बत सोच के जरिए, हमें नेगेटिव मेंटेलिटी नहीं दे रहे, हमें मुस्बत सोच दे रहे हैं, और मुस्बत सोच का नतीजा क्या आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर चेंज पैदा हो रहा है और मुआशरे के अंदर अमनो अमान सुकून। देखें दावत इस्लामी का इस मुआशरे में किरदार, अब दावत इस्लामी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ावजल करोड़ों लोग वाबस्ता हैं, कोई जिम्मेदारी की हद तक वाबस्ता है, तो कोई इज्तिमा की हद तक वाबस्ता है, कोई मदनी काफिलों की हद तक वाबस्ता है, तो कोई मोहब्बत की हद तक वाबस्ता है, कोई मदनी चैनल के जरिए वाबस्ता है, तो किसी तरह वाबस्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ावजल दावत इस्लामी ने इस मुआशरे में लाखों लाख लोग ऐसे हैं जिनकी साइकोलॉजी को पॉजिटिव बनाया, लड़ाई झगड़ों से बचाया और इनको नेकी की दावत के मदनी कामों पे लगा दिया। मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुम लालिया वसीयत फरमा चुके हैं कि अगर मेरा किसी से कोई बदला नहीं, मैंने माफ किया, सबको माफ किया, मैंने माफ किया, और अपने 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 सबको वसीयत फरमाते हैं कि भाई माफ कर दो, छोड़ दो, बदले की मुंतकीम मिजाज, यानी बदला लेने वाला, ये इंतकाम लेने वाला मिजाज ये हमारा नहीं होना चाहिए। लिहाजा मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अब चुगली जो है ये घर की बर्बादी में मेन किरदार अदा करता है, लड़ाई झगड़े के अंदर मेन किरदार जो है ये चुगली का है। और चुगली क्या है, किसी की बात दूसरे तक फसाद फैलाने के लिए पहुंचाना, ये चुगली है। और चुगलखोरी जो है ये बहुत सख्त मजमूम सिफत है, इससे हमें बचना चाहिए। क्या करना है, मदनी नमाज पर अमल करना है, तो लीजिए आशिकान रसूल मदनी नमाज का रिसाला, लीजिए देखिए पढ़िए तो सही, है क्या इसके अंदर, हमारे अंदर इसमें टॉलरेंस बर्दाश्त का मादा, हमारे अंदर इसके लिए सब्र, हमारे अंदर इसके लिए किरदार की तरक्की, हमारे अंदर इबादात के अंदर सोच पैदा करना, हमारे अंदर और औरादो वज़ाइफ, हमारे अंदर हकूकुल बात की सोच पैदा करना, करेक्टर बिल्डिंग के हवाले से अमीर अल सुन्नत दामद बरकातु मालिया ने जिंदगी गुजारने के लिए एक समझिए रहनुमा दे दिया हमें कि जनाब मदनी इनामात ले लीजिए और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कीजिए। देखा है कि जो मदनी इनामात के हामिल होते हैं वो आम तौर पर लड़ाई झगड़ों से भी बचते हैं, फजूल बातों से बचते हैं, फजूल झगड़ों से बचते हैं। तो आज दावत इस्लामी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुम लालिया का फैजान है और आप मदनी इनामात की तरगीब दिला रहे हैं, मदनी इनामात पर अमल करने का इरशाद फरमा रहे हैं। आइए हम भी इससे फैजान हासिल करते हैं, लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए, अपनी तरबियत के लिए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मदनी काफिलों में सफर करें। और जो घर की इस्लामी बहनें काश ए काश कि वो अपने महारिम को मदनी काफिलों में सफर करवाएं ताकि उनका जहन बने, लड़ाई झगड़ों से छुटकारा मिले। याद रखिए लड़ाई झगड़े करवाना ये शैतान को पसंद है, लड़ाई झगड़े मुल्क को मिल्लत के लिए पूरी कौमों के लिए ये तबाही और बर्बादी का सबब बनते हैं, लड़ाई झगड़े खानदानों घरानों की तबाही का सबब बनते हैं। लड़ाई झगड़े करना अल्लाह पाक को नापसंद है, नाराज करता है, लड़ाई झगड़े करना गुमराही का सबब है, लड़ाई झगड़े फितनों के दरवाजे खोल देते हैं, लड़ाई झगड़े दीन दुनिया की बर्बादी का सबब है, लड़ाई झगड़े नेमतों से महरूम करवा देते हैं। ऐ काश के हम भी अपना जहन बनाएं कि हमें जो आज नेमतें, हम चाहते हैं कि अल्लाह से नेमतें मिले, हम चाहते हैं हमारे घर में बरकत आ जाए, हम चाहते हैं कि बहुत लोग चाहते हैं हमें औलाद की नेमत मिले, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें अल्लाह तबारक व ताला की नेमतें मिले। तो फिर अपने आप को क्या करना है, झगड़ों से बचाना है और झगड़ों से बचाने के लिए दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आना है, मदनी काफिलों में सफर करना है, नेकी की दावत। देखिए घूम फिर कर नेकी की दावत देना, आप हाथ बांध कर नेकी की दावत दे, कोई सुनेगा कोई नहीं सुनेगा, कोई बात अमल करेगा कोई नहीं करेगा, कोई मस्जिद में आएगा कोई नहीं आएगा, आप देखिए बर्दाश्त का मादा कैसे पैदा होगा। हालांकि आप कह रहे हैं कि यार मैं सही तो कह रहा हूं, मैं आपको मस्जिद की दावत दे रहा हूं कि जो मस्जिद में गया हदीसे पाक में आता है कि वो अल्लाह के दीदार को गया, अल्लाह से मुलाकात को गया। मस्जिद अल्लाह का घर है और जब बंदा किसी घर में जाता है मुझसे मिलने जाता है जिसका घर है, तो हदीसे पाक में आता है जो मस्जिद में गया वो अल्लाह के दीदार को गया। मदनी चैनल के नाजरीन भी मदनी चैनल से वाबस्ता रहे, अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।